गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
एक गीत सौ अफसाने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को संज्ञा का नमस्कार। एक और नई कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के इस अंक के लिए हमने चुना है साल 1994 की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का गीत कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। इस गीत के दो संस्करण हैं, एक कुमार सानू की आवाज में और एक लता मंगेशकर की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। पंचम द्वारा बनाए गए इस गीत की धुन को सुनकर विधु विनोद चोपड़ा क्यों बौखला गए थे। इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद आरडी परमन ने कुमार सानू पर गालियों की बारिश क्यों की, गीत के फीमेल वर्जन को लेकर किस तरह के संशय और विवाद उत्पन्न हुए, कविता कृष्णमूर्ति के साथ ये गीत किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही है सुमेधा अग्रश्री।
1980 के दशक के द्वितीयार्ध में हिंदी फिल्मों से सुमधुर संगीत और स्तरीय कविता लुप्त प्राय हो चुकी थी। राहुल देव बर्मन, जिनके गाने कभी जवां दिलों की धड़कन हुआ करते थे, बदलते समय के साथ अप्रासंगिक बनते जा रहे थे। यूं कह सकते हैं कि फिल्म जगत ने उन्हें खारिज कर दिया था। सुनने में आता है कि उनके सबसे अच्छे और करीबी दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। अच्छी फिल्मों में संगीत देने के मौके मिलने लगभग बंद हो गए। 1990 के दशक के शुरुआती 3 सालों में उनके संगीत से सजी जो भी फिल्में आईं, वो कोई भी फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। ये फिल्में थीं जय शिव शंकर, जीने दो, दुश्मन, इंद्रजीत, झूठी शान, सियासत, सरफिरा, खुलेआम, द्रोही, गर्दिश, गुरुदेव, प्रोफेसर की पड़ोसन और तुम करो वादा। उन्हीं दिनों यानी 90 के दशक के शुरू में निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी की योजना बना रहे थे। उनकी 1989 की फिल्म परिंदा ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने गाने दिए। कहने का मतलब है कि विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित इससे पहले की किसी भी फिल्म में गाने नहीं थे और परिंदा के गीतों को रचने के लिए उन्होंने राहुल देव बर्मन को चुना। इस फिल्म का गीत तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके याद है, पंचम के सदाबहार गीतों में शुमार होता है। परिंदा के बाद 1942 अ लव स्टोरी के लिए भी विधु विनोद चोपड़ा ने पंचम को ही संगीतकार लेने का फैसला किया। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उनके साथ उन्होंने परिंदा में काम किया था, बल्कि इसलिए भी था कि इस फिल्म का पार्श्व स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित होने की वजह से संगीत में उस दौर को उभारना बहुत महत्वपूर्ण था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पंचम ने इस फिल्म के लिए ऐसे गाने रचे कि उनके बारे में हर किसी की धारणा बदल गई। ये बेहद अफसोस की बात है कि इस फिल्म के प्रदर्शित होने तक वे जीवित नहीं रहे। आज उन्हें लोग लोकप्रिय फिल्म संगीत का मसीहा मानते हैं, लेकिन ये स्वीकृति वे खुद देख सुन नहीं सके। अपनी अंतिम फिल्म के रूप में राहुल देव बर्मन अपने चाहने वालों के लिए वो सौगात छोड़ गए कि आज इस फिल्म के बनने के 30 साल बाद भी फिर इस तरह के गाने किसी फिल्म में सुनने को नहीं मिले। 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के पीछे पुरस्कारों की लंबी कतार लग गई। राहुल देव बर्मन को भी मरणोपरांत फिल्म के उत्तम संगीत के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इससे पहले उन्हें 2 बार ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1983 में सनम तेरी कसम के लिए और 1984 में फिल्म मासूम के लिए। 1942 अ लव स्टोरी के लिए गीतकार जावेद अख्तर और पार्श्व गायक कुमार सानू को एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गीत के लिए और कविता कृष्णमूर्ति को प्यार हुआ चुपके से इस गीत के लिए फिल्म फेयर मिले। लेकिन आज हम इस अंक में फिल्म के जिस गीत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि एक और गीत, लेकिन उतना ही सुंदर। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है तुमको पता है, हमको पता है समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो। जावेद अख्तर का लिखा ये खूबसूरत मुखड़ा आम फिल्मी गीतों के स्वरूप से अलग हटके है। पूरी तरह से काव्यात्मक शैली में लिखी ये पंक्तियां और उस पर पंचम की असरदार धुन इस गीत को बहुत खास बनाते हैं। कुछ ना कहो गीत के संदर्भ में विधु विनोद चोपड़ा ने अपने एक साक्षात्कार में विस्तार से बताया था। उन्हीं के शब्दों में, मेरी राय में पंचम एक बहुत अच्छे इंसान थे जिनसे मैं मिला हूं, और हमारे फिल्म जगत में जहां अधिकतर लोग गले लगाने लायक नहीं हैं, वो किसी हीरे से कम नहीं थे। मैं उन्हें 1942 अ लव स्टोरी के लिए लेना चाहता था और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस समय म्यूजिक कंपनीज तक ने ये कह दिया था कि अगर आप आरडी बर्मन से काम लेंगे तो हम आपका म्यूजिक नहीं खरीदेंगे। मैंने पंचम को कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो के लिरिक्स दिए और कहा कि आप इसकी धुन बनाइए, हम काम शुरू करते हैं। उन्होंने शुरू किया और एक बड़ी चलताओ किस्म की धुन बनाई। पूरे तबले के तेज रिदम के साथ एक आम सस्ते ठेकों से भरे गीत के रूप में वो गाने लगे। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं अपने काबू से बाहर हो गया। मैंने कहा, इट्स रबिश, इट्स टोटल क्रैप, मुझे नहीं मालूम आप इस तरह का संगीत क्यों बना रहे हैं। वहां पीछे दीवार पर सचिन दा की फोटो टंगी हुई थी, मैंने उस तरफ इशारा करके उनसे कहा, दरअसल मैं उन्हें ढूंढ रहा था और क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे इसलिए मैं उन्हें नहीं ले सकता, आपके पास आया हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे अच्छे संगीतकार हैं और आप हैं कि इस तरह की बेहुदा धुन मुझे परोस रहे हैं। ये म्यूजिक का एंड है, हर चीज का एंड है। ये सब सुनकर पंचम ने मेरी ओर देखा और कहा, क्या मैं फिल्म कर रहा हूं? मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने रेशमी लुंगी और कुर्ता पहना हुआ था। मैंने सख्ती से कहा कि दादा, आप मुझे इस तरह के इमोशंस मत दीजिए, आप मुझे केवल वो म्यूजिक दीजिए जिसकी मुझे आपसे उम्मीद है। और हाँ, आप ये फिल्म निश्चित रूप से कर रहे हैं, ये कोई किसी पर एहसान नहीं कर, आप बेस्ट हैं, अपना बेस्ट मुझे दीजिए, बस। एक सप्ताह गुजर गया, मैं फिर गया उनके पास और वहीं उसी जगह बैठ गया। सारे साजिंदे वैसे ही बैठे थे, बिल्कुल वही माहौल था। मैं भी गद्दे पर बैठ गया। पंचम ने शुरू किया, उन्होंने हारमोनियम पास खींचा और पहला जो नोट लगाया वो बांग्ला में था, रोंगीला 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 रे। और आप जानते हैं, पंचम के और मेरे बीच एक सांकेतिक भाषा थी। मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैं उसे लगभग गाते हुए देख सकता था और मैंने उस धुन के लिए अपनी स्वीकृति का संकेत देते हुए अपना हाथ ऊपर किया। वो गाते गाते रुक गए, उन्होंने कहा, लेकिन गाना तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। मैंने कहा, दादा, पहला नोट अगर ये है तो गाना किधर भी नहीं जा सकता। ये दो सप्ताहों का सफर था, वो एक असुरक्षित संगीतकार का सफर था जो संगीत कंपनियों को खुश करके अपने आप को फिल्म जगत में बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस दिन कुछ ना कहो कि जो धुन उन्होंने मुझे सुनाई वही असली पंचम थे, द ग्रेट आर डी बर्मन। दोस्तों, ये तो थी विधु विनोद चोपड़ा द्वारा साझा की गई कुछ ना कहो फिल्म के जन्म की कहानी। गीत बनकर पूरा हो जाने के बाद इसके दो संस्करण बनाए जाने की बात हुई, एक हैप्पी एक सैड। पहले हैप्पी वर्जन की बात करते हैं। फिल्म के नायक अनिल कपूर के पार्श्व गायन के लिए कुमार सानू को चुना गया। अपने एक साक्षात्कार में सानू ने बताया कि जब वे इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गए, रिहर्सल के बाद जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ और वे शीशे के कमरे से बाहर निकले तो पंचम उनके पास आए और उन पर भयंकर गालियां बकने लगे। कुमार सानू घबरा गए कि क्या बात हो गई, क्या उन्होंने कुछ गलत गा दिया, उनसे कोई गड़बड़ी हो गई। और तब उनके माथे की शिकन उतरे हुए चेहरे को देखकर वहां उपस्थित किसी ने उन्हें बताया कि जब किसी गीत की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है तब पंचम गाने से खुश हो जाते हैं और ऐसे ही गालियां बकते हैं, ये उनकी खुशी के इजहार का तरीका है। ये सुनकर कुमार सानू की जान में जान आई और मन में सोचने लगे कि किसी की खुशी जाहिर करने का तरीका इतना भी भयंकर नहीं होना चाहिए कि सामने वाले की जान ही निकल जाए। अब हम आते हैं इस गीत के दूसरे संस्करण पर जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। दोनों गीतों के मुखड़े बिल्कुल एक हैं लेकिन दोनों के अंतरे अलग अलग हैं। जावेद साहब ने कुल चार अंतरे लिखे, दो अंतरे प्रति संस्करण के हिसाब से। लता जी वाले संस्करण के साथ कुछ विवाद जुड़ गया। चलिए उसी की बात करते हैं। ऐसा सुनने में आया कि इस गीत के महिला संस्करण को कविता कृष्णमूर्ति से ही गवाया गया था, क्योंकि फिल्म के बाकी गीत वो ही गा रही थी और मनीषा कोइराला का प्लेबैक कर रही थी। बाद में इसे दोबारा लता जी की आवाज में रिकॉर्ड करवाया गया। जब लता जी से इस बारे में पूछा गया कि क्या उन्हें कविता कृष्णमूर्ति के गाए गीत के बारे में पता था, तो उन्होंने बताया, मैं केवल वही जानती हूँ जो पंचम ने मुझे बताया था। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, दीदी 1942 ए लव स्टोरी का एक आखिरी गाना है जिसके लिए चोपड़ा बहुत उत्सुक हैं कि आप उसे गाएं, क्या आप गाएंगी? पंचम और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे, वो अपने सारे सुख दुख मेरे साथ शेयर किया करते थे। मैंने कहा, बेशक मैं उनके लिए गाना गाऊंगी। फिर मैं अमेरिका में अपने शोज के लिए चली गई। जब लौटी तब तक पंचम जा चुका था। जाहिर सी बात है कि पंचम के मरणोपरांत लता जी की आवाज में विधु विनोद चोपड़ा और उनकी टीम द्वारा यह गीत रिकॉर्ड किया गया। उस रिकॉर्डिंग में उपस्थित एक साजिंदर ने बताया, विधु विनोद चोपड़ा चाहते थे कि एक गाना लता दीदी से गवाया जाए। इस बारे में पंचम दा से सलाह की तो पंचम दा इसके लिए तैयार थे। उन्होंने दीदी से कुछ न कहो गाने के लिए कहा, लेकिन गाना रिकॉर्ड होने के पहले ही पंचम दा का निधन हो गया। हमने पंचम दा के बिना गाना रिकॉर्ड किया। हम बहुत उत्साहित थे, इतिहास रच रहा था। मुझे याद है कि विनोद जी लता दीदी से एक और टेक लेने के लिए कहते रहे, लेकिन लता दीदी ने कहा, अब रहने दीजिए, हो गया, और वह चली गई। दोस्तों, एक अन्य सूचना के अनुसार पंचम के जीवित रहते समय ये गीत लता जी से गवाने का कोई भी विचार नहीं था, बल्कि पंचम ने इस फीमेल वर्जन के लिए बिल्कुल अलग धुन बनाई थी जो कविता कृष्णमूर्ति को सुनाई भी गई, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से ये गाना पूरा नहीं हो सका। पंचम के निधन के बाद विधु विनोद चोपड़ा को लगा कि पंचम का आखिरी गीत उनकी फिल्म में जा रहा है, इसलिए ये लता मंगेशकर की आवाज में ही होना चाहिए। तब उन्होंने कविता कृष्णमूर्ति से अपनी इस इच्छा को व्यक्त किया और पूछा कि उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा। कविता जी ने खुशी खुशी सहमति दे दी। तब लता जी से संपर्क किया गया, लेकिन क्योंकि किसी को उस नई धुन के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए लता जी वाले संस्करण में भी वही पुरानी धुनें हैं जो कुमार सानू के संस्करण में हैं। वर्ष 2000 में राहुल देव बर्मन के जन्मदिन पर कविता कृष्णमूर्ति ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। हर किसी को चौंकाते हुए उन्होंने उस धुन में इस गीत का एक संस्करण जारी किया जो पंचम ने फीमेल वर्जन के लिए बनाया था, जिसे कविता जी गाने वाली थी। अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कविता जी ने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो पंचम दा, 1992 में मैंने पंचम दा के साथ फीमेल वर्जन के लिए एक अलग अंतरे के साथ कुछ ना कहो की रिहर्सल की थी। ये कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन ये धुन इतने वर्षों तक मेरे दिमाग में रही। मैंने जावेद अख्तर को फोन किया, उन्होंने ये शब्द लिखे थे और तुरंत मुझे दे दिए। उनकी दयालुता और समर्थन के लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। अपने प्रिय मित्र जॉली मुखर्जी से, जो पंचम दा और उनकी संगीत टीम को बचपन से जानते थे, मेरे लिए इस गीत की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। बिना कोई सवाल पूछे उन्होंने संगीतकारों की व्यवस्था करके एक अच्छा ट्रैक बनाकर मेरी बहुत मदद की। फिर मैंने विधु विनोद चोपड़ा जी को फोन किया, वो भी इतने ही दयालु रहे कि उन्होंने मुझे फिल्म के कुछ दृश्यों का उपयोग करने की अनुमति दे दी। लव स्टोरी 1942 के लिए गाना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। दोस्तों, चलते चलते आपको उन अनसुने दो अंतरों के बोल बताते चलें। पहला अंतर कुछ यूं है, सुनी सुनी सी ये राहें फैला रही हैं अपनी बाहें, मध्यम मध्यम चांदनी है या दुख से डूबी है निगाहें, बोझल बोझल सारी हवाएं गुमसुम गुमसुम सी फिजाएं, और कहीं भी कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। और दूसरा अंतर है, ये वो पल है जिसमें गम भी मेरे दिल से ऊब रहा है, सन्नाटे का शोर भी जैसे धीरे धीरे डूब रहा है, मुझको छू के मुझे जगा दो, कुछ ना कहो, लेकिन ये बता दो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।
दोस्तों, अब इसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही कहाँ है, है ना? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे घर खुदा लाया तो। नमस्कार।
एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।